नमस्कार। देश की बात में हाजिर हैं। पहले बात उत्तर प्रदेश की, जहां बैठकों का दौर जारी है। आगामी उपचुनावों को लेकर मुख्यमंत्री ने बैठक की है, तो इन चुनावों की रणनीति पर दिल्ली में भी चर्चा है। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने प्रधानमंत्री मोदी से यूपी के राजनीतिक घटनाक्रम पर एक घंटे तक मुलाकात की है, लोकसभा चुनाव पर फीडबैक दिया है। और इस पर अधिक जानकारी के लिए सीधे चलेंगे अपने सहयोगी विकास भदौरिया और रणवीर के पास, जो लखनऊ में हैं। विकास, पहले आपसे, जो दिल्ली में प्रधानमंत्री के साथ यूपी बीजेपी अध्यक्ष की बैठक हुई है, क्या इस पे निकल कर आया?
देखिए, आज जब 10 बजे के आसपास बैठक हुई थी, उसमें भूपेंद्र चौधरी प्रधानमंत्री के साथ 1 घंटा तक उस बैठक में रहे। और जाहिर सी बात है, जो प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई थी, उसमें जिस तरह से असंतोष उभर कर सामने आया था, उस बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूपेंद्र चौधरी से सवाल जवाब किए। इसके अलावा लोकसभा चुनाव के परिणामों को लेकर विस्तार से चर्चा हुई और आने वाले 10 विधानसभा के उपचुनावों पर चर्चा, रणनीति पर कैसे बीजेपी आज जीतने के लिए
बिल्कुल। तो आपने ये कहा कि
इस
जिस
पर
तरह
भी
से
बातचीत
बीजेपी प्रदेश
हुई
अध्यक्ष की
प्रधानमंत्री
मुलाकात हुई
नरेंद्र
प्रधानमंत्री से सुबह,
और
जो एक
उनके
घंटे
निरंतर
चली है।
संपर्क में रहे।
हमारे साथ रणवीर भी मौजूद हैं। रणवीर, वहां पे मुख्यमंत्री बैठक कर रहे हैं, शायद शाम 6 बजे राज्यपाल से भी मिल सकते हैं, ये आपकी तरफ से जानकारी आई थी। वहां पे भी बैठकें हुई हैं, तो ये जो बैठक हुई है दिल्ली में, कैसे देखे?
देखिए, तीन अलग अलग मुद्दे हैं, मैं बहुत क्लियर कर दूं। मुख्यमंत्री ने जो आज बैठक की है, वो मुख्यमंत्री की बैठक जो उपचुनाव होने वाले हैं, उन उपचुनाव में बीजेपी की तैयारियां क्या है, इसको लेकर के मुख्यमंत्री ने 30 मंत्रियों की ड्यूटी लगाई थी। इसमें 13 कैबिनेट और 17 राज्य मंत्री थे। उनको कहा गया था कि इन 10 विधानसभा सीटों पर जाएं, वहां पर देखें क्या माहौल है, बेहतर प्रत्याशी कौन हो सकता है, बूथ और पन्ना प्रमुख लेवल पर जो पदाधिकारी हैं उनको, उनके साथ समन्वय बनाएं और जो स्थानीय मुद्दे हैं उनको बताएं, ताकि सरकार उसको दूर कर सके। ये एक बैठक जो मुख्यमंत्री के यहाँ थी। दूसरा मुद्दा जो दिल्ली में चल रहा है, उसमें केशव प्रसाद मौर्य और चौधरी, इन्होंने बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ मुलाकात की है। कल जेपी नड्डा के साथ केशव प्रसाद मौर्य मिले और आज प्रधानमंत्री मोदी से भूपेंद्र चौधरी मिले। ये दरअसल जो लोकसभा चुनाव में बीजेपी के अपेक्षा के से खराब नतीजे आए हैं, 33 सीटें बीजेपी जीती है, उसमें बीजेपी ने स्थानीय स्तर पर यानी लखनऊ में बैठकें करके हार के कारणों को जानने की कोशिश की। इसमें जितने भी क्षेत्र हैं, बीजेपी ने यूपी को 6 अलग अलग क्षेत्रों में बांटा है और सभी क्षेत्रों के हिसाब से लोकसभावार जानकारियाँ ली गई और जानकारियाँ लेने के बाद एक रिपोर्ट तैयार की गई। तो जो बीजेपी की हार की वजहें थी, उनको बीजेपी के टॉप मैनेजमेंट को, टॉप लीडरशिप को बताना था और इसके लिए भूपेंद्र चौधरी ने मुलाकात की। रही बात केशव प्रसाद मौर्य की, तो केशव प्रसाद मौर्य ने एक ट्वीट किया था और एक बयान दिया था। रविवार के दिन कार्यकारिणी की बैठक में उन्होंने कहा था कि संगठन सरकार से बड़ा है। ये पहली बार केशव प्रसाद मौर्य ने नहीं बोला है। वो खुद प्रदेश के अध्यक्ष रह चुके हैं और 2017 से उप मुख्यमंत्री हैं। तो 2017 के पहले प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर वो संगठन में थे और 2017 से अब तक वो सरकार में हैं। केशव प्रसाद मौर्य 2022 में 21 अगस्त को एक ट्वीट करके उन्होंने कहा था कि संगठन सरकार से बड़ा और उसी बात को दोहराया था। केशव प्रसाद मौर्य से जुड़े जो करीबी लोग हैं, उनसे जब हमने बात की कि इस बयान का क्या मायने हैं, तो उन्होंने कहा कि जो लोकसभा चुनाव है, उसके परिणामों में सबसे बड़ी एक वजह जो आई, वो विपक्ष का फैलाया हुआ भ्रम है और जो दूसरी वजह थी वो ये कि बीजेपी कार्यकर्ता नाराज है और वो वोटरों को घर से निकाल करके बूथ तक नहीं लाया। तो ऐसे में जो नाराज कार्यकर्ता हैं, उनका मोरल बूस्टअप करने के लिए केशव प्रसाद मौर्य ने यह बयान दिया है। अब जो तीसरी खबर आई कि राज्यपाल से मिल सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, वो 29 तारीख से यूपी में मॉनसून सत्र शुरू होने वाला है और इस मॉनसून सत्र से पहले राज्यपाल से मिलकर के मुख्यमंत्री अपने सरकार की जो तैयारियां उस पर चर्चा कर सकते हैं। यानी कि तीनों ही चीज़ अलग अलग मसलों का, एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है, लेकिन जिस तरह से जोड़ा जा रहा है टाइमिंग के हिसाब से कि 2 दिन के अंदर में कार्य समिति की बैठक हुई, केशव मौर्य का बयान आया, फिर सीएम की बैठक हुई और फिर केशव मौर्य पहुंच गए दिल्ली, भूपेंद्र चौधरी पहुंच गए दिल्ली, इसलिए सबको जोड़ करके देखा जा रहा है तो एक ऐसी तस्वीर निकल करके आ रही है कि जैसे बीजेपी में बहुत बगावत हो रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तीनों अलग अलग मुद्दे हैं और बीजेपी में इस तरह से काम चल रहा है।
बिल्कुल बिल्कुल रणवीर, अभी आपके जो उपचुनावों पर आपने रिपोर्ट भेजी वो भी दिखा लेते हैं। हमें बताया जा रहा है विकास जुड़ गए हैं, आप सुन पाएंगे। जी विकास, जो आप सुबह की बैठक के बारे में बता रहे थे, बता दीजिए।
तो इस बैठक में जैसा रणवीर ने विस्तार से बताया कि जो आला नेतृत्व था उसके साथ साझा करना था, उस मसले पर चर्चा होगी। इसके अलावा जाहिर तौर पर 10 विधानसभाओं के उपचुनाव हैं, इस पर पीएम ने, प्रधानमंत्री ने क्योंकि उनके का गृह राज्य भी हो गया है, अब उत्तर प्रदेश वहीं से लोकसभा से चुनकर आते हैं, तो इन सीटों पर बीजेपी की क्या रणनीति होगी, किस तरह की जा रही है, इस पर विस्तार से चर्चा हुई। प्रश्न पर उभरे हैं उनके निराकरण के लिए किस तरह से प्रयास किए जा रहे हैं, इस पर भी चर्चा हुई, उनके निराकरण के कुछ निर्देश पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा।
जी, विकास, तो ये अपने आप में महत्वपूर्ण है, आपने जानकारी दी, इसके लिए धन्यवाद। आप रणवीर बने रहिएगा हमारे साथ। तो पहले वो ग्राउंड रिपोर्ट देख लेते हैं जो आज रणवीर ने लखनऊ से जो मुलाकातें बैठकें हुई हैं उस पर भेजी।
लोकसभा चुनाव में अपेक्षा के मुताबिक नतीजे न पाने वाली बीजेपी अब 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए कमर कस रही है और बागडोर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभाली है। इसको लेकर मुख्यमंत्री ने आज एक अहम बैठक भी लखनऊ में की। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी में खाली चल रही विधानसभा की 10 सीटों पर माहौल जानने के लिए अपने 30 मंत्रियों को जिम्मा सौंपा था। इनमें 13 कैबिनेट और 17 राज्य मंत्री शामिल थे। इन मंत्रियों को कहा गया था कि अपनी अपनी आवंटित विधानसभा सीटों पर जाएं और वहां का माहौल जानकर एक रिपोर्ट तैयार करें। इसी रिपोर्ट पर समीक्षा के लिए मुख्यमंत्री ने अपने घर पर बैठक बुलाई और 1.5 घंटे तक मंत्रियों से बात की। इस बैठक में सभी 10 सीटें जीतने के लक्ष्य पर चर्चा की गई।
भारतीय जनता पार्टी सदैव जो है एक कार्यक्रम करती रहती है, चुनाव हो या चुनाव न हो। ठीक है, वहाँ उपचुनाव होने वाला है तो वहाँ थोड़ा विशेष चिंता हो रही है, लेकिन जब चुनाव नहीं भी होते हैं, हम लोग सत्ता में हैं, तब भी ऐसा नहीं है। और दलों के कार्यकर्ता और भाजपा के कार्यकर्ता को आप देखेंगे, आज भी भाजपा का कार्यकर्ता हर समय फील्ड में काम करता रहता है। वो उसको ये नहीं कि सत्ता में है तो काम नहीं करेगा, तो वो अभी भी बूथ स्तर तक, अपने सेक्टर स्तर तक या मंडल स्तर तक हमारे पार्टी के कार्यक्रम लगे रहते हैं।
मुख्यमंत्री ने अपने मंत्रियों से सारी जानकारी ली और कहा कि वो अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में हफ्ते में कम से कम 2 दिन जरूर रहें और कार्यकर्ताओं से संवाद बनाए रखें, साथ ही स्थानीय समस्याओं की जानकारी भी सरकार को मुहैया कराएं।
देखिए, मंत्री भी अपने स्तर से देख रहे हैं, हमारे संगठन के लोग भी लगे हुए हैं, संगठन के लोगों का अलग से मैंने उसमें अपना काम देख रहे हैं, तो उसमें कोई ये नहीं है, लेकिन यह है कि बस चुनाव होगा और हम लोग चुनाव जीतेंगे।
सूत्र बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रियों से बेहतर प्रत्याशियों के नामों का सुझाव मांगा है। इसके साथ ही बूथ और पन्ना प्रमुख स्तर पर एक बेहतर तालमेल बनाने और साथ ही जो अनसुलझे मुद्दे हैं उन स्थानीय मुद्दों को सुलझाने का प्रयास करने को कहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन सीटों पर खास तौर पर बेहतरीन तालमेल करने की जरूरत है और सभी सीटें जीत कर ये लक्ष्य रखा जाए कि लोकसभा चुनाव में जो हुआ वो विपक्ष का फैलाया हुआ अफवाह था और इस वजह से भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ। उत्तर प्रदेश में जिन 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं उनमें मैनपुरी की करहल, अलीगढ़ की खैर, अयोध्या की मिल्कीपुर, अंबेडकर नगर की कटेहरी, मुजफ्फरनगर की मीरापुर, कानपुर की सीसामऊ, प्रयागराज की फूलपुर, गाजियाबाद की सदर सीट, मिर्जापुर की मझवा और मुरादाबाद की कुंदरकी विधानसभा सीट शामिल है। इनमें सीसामऊ सीट वो सीट है जहां से सपा विधायक को सजा होने के बाद ये सीट खाली हुई है। बाकी सीटें विधायकों के सांसद बनने के बाद उनके इस्तीफे की वजह से खाली हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीजेपी को ही इन चुनावों की चिंता है। कल ही समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अयोध्या के कुछ नेताओं और संतों के साथ मुलाकात कर इन चुनावों की तैयारियां शुरू कर दी हैं। सपा से जुड़े सूत्र बता रहे हैं कि इंडिया अलायंस की एकता आने वाले उपचुनाव में दिखाई दे, इसके लिए समाजवादी पार्टी 10 में से 2 सीटें कांग्रेस को दे सकती है।
ये सरकार जो आपस में लड़ रही है, इनके फैसले भी जल्दीबाजी के हैं, और हम सावधान करना चाहते उत्तर प्रदेश की जनता को भी कि भारतीय जनता पार्टी के लोग आपस में लड़ करके और कुर्सी की लड़ाई में पूरा एडमिनिस्ट्रेशन खत्म कर दिया है। जहाँ इन्हीं के विधायक, इन्हीं के लोग आरोप लगा रहे हैं कि भ्रष्टाचार चल रहा है, हम लोगों ने अखबारों में पढ़ा है कि मुख्यमंत्री खुद स्वीकार कर रहे हैं कि बड़े पैमाने पर दलाली चल रही है, जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद स्वीकार कर रहे हों कि दलाली हो रही हो, और अखबारों में बड़ा बड़ा लिखा हो कि दलाली हो रही है, तो जनता जानती होगी कि कितनी दलाली हो रही है।
जिन 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं उनमें 5 सीटें सपा के पास थीं, वहीं 3 सीटें बीजेपी ने जीती थी, 1 सीट लोकदल और 1 निषाद पार्टी के पास थी। यूपी की इन 10 सीटों पर नवंबर से पहले चुनाव कराने हैं, लेकिन बीजेपी से लेकर सपा तक ने अभी से चुनावी तैयारियां शुरू कर दी हैं। अब जनता बीजेपी के साथ जाएगी या फिर इंडिया अलायंस के, ये तो जनता ही जाने और चुनाव के नतीजों से पता चलेगा। लेकिन एक बात साफ है कि लोकसभा चुनाव भले खत्म हो गया हो, लेकिन यूपी की राजनीतिक लड़ाई खत्म होने वाली नहीं है। लखनऊ से कैमरा पर्सन वीरेन सैनी के साथ रणवीर, एनडीटीवी इंडिया के लिए।
इस बीच केशव मौर्य ने अपने पिछले बयान में बदलाव किया है। उन्होंने पहले कहा था कि संगठन सरकार से बड़ा है, तब उनके बयान को मीडिया में खूब उछाला गया, लेकिन अब उन्होंने माना है कि सरकार और संगठन दोनों बराबर हैं। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया है, सपा बहादुर श्री अखिलेश यादव जी, भाजपा की देश और प्रदेश दोनों जगह मजबूत संगठन और सरकार है। सपा का पीडीए धोखा है, यूपी में सपा के गुंडाराज की वापसी असंभव है, भाजपा 2027 विधानसभा चुनाव में 2017 दोहराएगी। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने यूपी में बीजेपी के भीतर किसी भी घमासान से इनकार किया है। एनडीटीवी से बातचीत में उन्होंने कहा है कि बीजेपी में सरकार और संगठन दोनों एक दूसरे के पूरक हैं।
केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा सर हमारे साथ में हैं। सर, अभी उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा उठा पटक मचा हुआ है। केशव प्रसाद मौर्य बोल रहे हैं कि सरकार से बड़ा संगठन होता है।
देखिए, कार्यकर्ता भाव से हम देखते हैं तो संगठन की अपनी भूमिका है, लेकिन संगठन अपने जगह पर है, सरकार अपनी जगह पर है। और चूंकि भाजपा की सरकार है तो सरकार भाजपा की है, तो मुझे लगता है वो कार्यकर्ताओं ने बनाई है, तो इसलिए संगठन का और सरकार का एक दूसरे के पूरक का भाव रहता है, कहीं बड़े छोटे का भाव नहीं। इसलिए जो हमारा शीर्ष नेतृत्व जो तय करता है उसी पर हमारे कार्यकर्ता नीचे फॉलो करते हैं।
लेकिन सर, केशव प्रसाद मौर्य जी सरकार में भी हैं, डिप्टी सीएम भी हैं, तो ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं कि संगठन बड़ा होता है?
यदि ऐसा कुछ नहीं कहा है, लेकिन पता नहीं आप लोग कैसे उसे बढ़ा चढ़ा कर ऐसा कर रहे हैं। अब कार्यकर्ता और संगठन, इसकी बात करना कोई बेमानी नहीं है, लेकिन मैंने कहा ना, सरकार और संगठन, तो भाजपा की सरकार है तो दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं, और संगठन का महत्व अपना अलग है और सरकार का महत्व अलग है।
सर, आप भी लंबे समय तक संगठन में रहे हुए हैं, कार्यकर्ता के तौर पर आपने काम किया है बीजेपी में, तो आपको लगता है कि कार्यकर्ता की कुछ उपेक्षा इस वक्त हो रही है, तभी यह बयान सामने आ रहे हैं?
देखिए, अगर मैं राजनीतिक दलों की बात कहूँ तो केवल और केवल भाजपा ही ऐसी पार्टी दिखाई पड़ती है जो भाजपा कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। कभी कम्युनिस्ट कार्यकर्ता आधारित पार्टी मानी जाती थी, तब मैं कहूँगा कि संगठन कहीं है तो केवल भाजपा के अंदर है। अच्छा। और बूथ से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक का संगठन कहीं है तो भाजपा का है। और भाजपा में भाजपा जैसे देवतुल्य और निष्ठावान कार्यकर्ता किसी पार्टी में आपको मिलने वाले नहीं है। और 365 दिन निस्वार्थ भाव से जो काम करता है वो केवल और केवल भाजपा का कार्यकर्ता ही काम करता है। तो भाजपा कार्यकर्ता कभी निराश नहीं होता और लगातार वो आगे बढ़ने की प्रेरणा लेता है अपने नेतृत्व से और आगे बढ़ता है।
सर, एक आखिरी सवाल है बस, कि अभी कई सारे बीजेपी के विधायकों के भी ट्वीट फेसबुक पर भी उन्होंने लिखा है, और साथ में समाजवादी पार्टी ने भी आरोप लगाया है कि सरकार में सब कुछ ठीक नहीं है, एक दूसरे से टकराहट चल रही है।
देखिए, जहाँ तक बड़ा परिवार होता है तो हो सकता है कि कहीं कुछ अपनी तरफ से उन्होंने समस्या बोला हो, लेकिन मैंने देखा है कि मीडिया भी कुछ बड़ा चढ़ा करके पेश उन चीज़ों को करता है। लेकिन जहाँ तक समाजवादी पार्टी की बात आप करते हैं, तो समाजवादी पार्टी वो पार्टी जिसका नाम समाजवादी और पार्टी पूरी परिवारवादी, वो क्या जाने संगठन की रीति नीति क्या होती है, तो कम से कम वो संगठन की रीति नीति समझे, जाने, उसके बाद में भाजपा के ऊपर उंगली उठाए।
शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। शेख मोमिन के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।
प्राइवेट कंपनियों में कर्नाटक के लोगों को आरक्षण देने के लिए राज्य की सिद्धरमैया सरकार ने एक बिल कैबिनेट से पास करवाया है। अब इसे विधानसभा में पेश करने की तैयारी चल रही है। अगर ये बिल कानून बनता है तो कर्नाटक में निजी क्षेत्र की कंपनियों में मैनेजीरियल पदों पर कर्नाटक के स्थानीय लोगों के लिए 50% और नॉन मैनेजीरियल पोस्ट पर 70% आरक्षण देना होगा।
यह मसौदा प्रति है द कर्नाटका स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट्स इन द इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज एंड अदर एस्टेब्लिशमेंट्स बिल 2024 की। इस बिल में कर्नाटका के स्थानीय लोगों को निजी क्षेत्र की छोटी बड़ी कंपनियों में 50% से 70% आरक्षण देने की बात कही गई है।
बिल पर अभी उद्योग और आईटी मंत्री से चर्चा होनी है। नियम बनाने से पहले विस्तृत चर्चा स्टॉक होल्डर से की जानी है, यानी निजी कंपनियों से। बेवजह घबराने की जरूरत नहीं है।
And more importantly, a wider consultation with the industry, so there is no need to panic.
ड्राफ्ट बिल के मुताबिक कर्नाटका के निजी कारखानों और प्रतिष्ठानों में प्रबंधन की नौकरियों में 50% और गैर प्रबंधन वाली नौकरियों में 70% जगह स्थानीय लोगों को देनी होगी। उम्मीदवारों के पास कन्नड़ा भाषा के साथ माध्यमिक विद्यालय का प्रमाण पत्र अगर नहीं है तो उन्हें दक्षता परीक्षा पास करनी होगी। इसकी अनदेखी करने पर 10,000 से 25,000 रुपए तक का जुर्माना देना होगा। अगर योग्य उम्मीदवार न मिले तो कंपनियों को कुछ रियायतें मिल सकती हैं। बायोकॉन की संस्थापक किरण मजुमदार शाह का कहना है कि टेक हब होने की वजह से कुशल लोगों की जरूरत पड़ती है। इस नीति से स्थानीय लोगों को रोजगार देने के चक्कर में टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आगे की जगह हम खो देंगे। बीजेपी का कहना है कि कनाडिगास को स्किल ट्रेनिंग देनी चाहिए और अच्छी शिक्षा भी, ताकि उन्हें कहीं भी नौकरी मिले। मोहनदास पाई आईटी सेक्टर का जाना माना चेहरा है। इंफोसिस से उनको पहचान मिली, वो भी इस फैसले से खुश नहीं है।
बिल से बहुत नुकसान होगा कर्नाटका को, कनाडिगास को, सब लोगों को लिए। इधर हमारा ब्रांड इमेज ही बहुत खराब हो गया है। पहले ही ब्रांड इमेज अच्छा नहीं था, अभी और भी खराब हो गया है। लोग जाएंगे तमिलनाडु, जाएंगे तेलंगाना, जाएंगे क्यों आएंगे इधर? हमारा ईवी इंडस्ट्री चले गया तमिलनाडु को, क्योंकि इधर जमीन नहीं दिया।
भ्रष्टाचार को लेकर बैकफुट पर खड़ी सिद्धरमैया सरकार ने ऐसा लगता है कि आनन फानन में स्थानीय लोगों के लिए रिजर्वेशन बिल का मसौदा तैयार करवाया है, क्योंकि उद्योग जगत को भी उन्होंने भरोसे में नहीं लिया है। यानी भ्रष्टाचार के मुद्दे से ध्यान बटाने के लिए सिद्धरमैया तमाम हथकंडे अपना रहे हैं। बेंगलुरु से निहाल खिदवई, NDTV इंडिया।